ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 28 दिसंबर 2025 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस, स्वर्णपथ, व्यवस्था विवरण। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे सम्मान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। उत्तरदायी अध्ययन यशाया। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तब यशी के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धाम से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सौंते से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कट्टी का फेंटा धाम और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। वो अपने वचन के द्वारा उनको ठीक करता है और जिस घड़े में वो पड़े हैं उससे उनको निकालता है। यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। लूका। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश से था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने डरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब यकायक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहता दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। योहाना, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सत्य है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मत्ती, और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस युगे नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। योहाना, यीशु ने उससे कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। योहाना, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। योहाना, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इफ़सियों, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। जब एक नया आध्यात्मिक विचार धरती पर पैदा होता है तो यशाया की भविष्यवाणी का पवित्र शास्त्र कशय रूप से पूरा होता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत होगा। यीशु ने एक बार अपनी शिक्षाओं के विषय में कहा था कि मेरे उपदेश मेरे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले के हैं। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यूहन्ना अध्याय 7:16-17 छंद। वर्ष 1866 में मैंने क्रिश्चियन साइंस या जीवन सत्य और प्रेम के दिव्य नियमों की खोज की और अपनी खोज का नाम क्रिश्चियन साइंस रखा। वैज्ञानिक मानसिक उपचार के पूर्ण सिद्धांत के इस अंतम रहस्य उद्घाटन के स्वागत के लिए भगवान ने कई वर्षों के दौरान मुझे विनम्रता पूर्वक तैयार किया। ये अप्रत्यक्ष सिद्धांत इमैनुअल के रहस्य उद्घाटन की ओर इशारा करता है। भगवान हमारे साथ है, संप्रभु उपस्थिति पुरुषों के बच्चों की हर बीमारी से बचाते हुए शरीर जिसका वारिस है। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से धाम और चिकित्सा एक दिव्य प्रकृति और सार से प्रतीत हैं। ये ताज़ा विश्वास और समझ के लिए दिया जाता है और विचार भगवान के साथ खुद को बुद्धिमानी से परिचित करते हैं। अपनी खोज के 3 साल बाद मैंने माइंड हीलिंग की इस समस्या का समाधान खोजा, शास्त्रों की खोज की ओर थोड़ा और पढ़ा, समाज से अलग रहा और एक सकारात्मक नियम की खोज के लिए समय और ऊर्जा समर्पित की। ये खोज मधुर, शांत और आशा से भरी हुई थी, स्वार्थपूर्ण या निराशाजनक नहीं थी। मैं जानता था कि सभी सामंजस्य पूर्ण मन के कार्य का सिद्धांत ईश्वर है और ये के पवित्र उत्थान विश्वास द्वारा आदम मसीही उपचार में उत्पन्न हुए थे। लेकिन मुझे इस उपचार का पता होना चाहिए और मैं दिव्य रहस्य उद्घाटन कारण और प्रदर्शन के माध्यम से पूर्ण निष्कर्ष के लिए अपना रास्ता जीता। समझ में सत्य का रहस्य उद्घाटन मेरे पास धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिव्य शक्ति के माध्यम से आया। वैज्ञानिक खुलासे की इन बातों को मानते हुए बाइबल ही मेरी अकेली पाठ्य पुस्तक थी। धर्म ग्रंथों पर रोशनी डाली गई, तर्क और खुलासे में तालमेल बिठाया गया और इसके बाद क्रिश्चियन साइंस की सच्चाई सामने आई। इस पुस्तक विज्ञान और स्वास्थ्य में निहित विज्ञान मुझे किसी मानव कलम या जुबान ने नहीं सिखाया और ना तो जुबान और ना कलम उसे उलट सकती है। ये पुस्तक उथली आलोचना या लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण छात्रों द्वारा विकृत हो सकती है और इसके विचारों का अस्थायी रूप से दुरुपयोग और गलत प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसमें निहित विज्ञान और सत्य हमेशा परखने और प्रदर्शित करने के लिए रहेगा। जब से लेखक ने रोग और पाप दोनों के उपचार में सत्य की शक्ति की खोज की है, तब से उसकी प्रणाली का पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और उसे कम नहीं पाया गया है। लेकिन क्रिश्चियन साइंस की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मनुष्य को उसके दिव्य सिद्धांत का पालन करते हुए रहना होगा। इस विज्ञान की पूर्ण शक्ति वास्तविक करने के लिए भावतिक इंद्रियों की विसंगतियों को आध्यात्मिक भावना के समान जैसे के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि संगीत का विज्ञान गलत सुरों को ठीक करता है और ध्वनि को मधुर समान जैसे प्रदान करता है। लेखिका की पवित्र खोज के बाद उसने मसीही धर्म को साइंस का नाम दिया, भावतिक इंद्रियों को त्रुटि का नाम दिया और मन को पदार्थ का नाम दिया। विज्ञान ने विश्व को इस मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए बुलाया है और इसका प्रदर्शन जो बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को नष्ट करता है तथा सार्वभौमिक सद्भाव को प्रकट करता है। उन स्वाभाविक क्रिश्चियन विज्ञानों, प्राचीन महानुभावन और मसीह यीशु के लिए परमेश्वर ने निश्चित रूप से क्रिश्चियन विज्ञान की भावना को प्रकट किया, भला ही पूर्ण अक्षर नहीं। क्रिश्चियन साइंस शब्द का प्रयोग लेखक द्वारा दिव्य उपचार की वैज्ञानिक प्रणाली को नामित करने के लिए किया गया था। इस रहस्य उद्घाटन में 2 भाग शामिल हैं। 1, मन चिकित्सा के इस दिव्य विज्ञान की खोज, शास्त्रों की आध्यात्मिक समझ, सांत वनादाता की शिक्षाओं के माध्यम से जैसा कि गुरु ने वादा किया था। 2, वर्तमान प्रदर्शन से ये सिद्ध होता है कि यीशु के तथाकथित चमत्कार विशेष रूप से किसी ऐसे युग से संबंधित नहीं थे जो अब समाप्त हो चुके हैं, बल्कि वो एक सदैव क्रियाशील ईश्वरीय सिद्धांत को दर्शाते हैं। इस सिद्धांत का संचालन वैज्ञानिक व्यवस्था की शाश्वतता और अस्तित्व की निरंतरता को इंगित करता है। यीशु ने नश्वर मन और शरीर को ठीक करने के लिए क्रिश्चियन साइंस की शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इस शक्ति को नजरअंदाज कर दिया गया था और इसे फिर से संकेतों के पालन के साथ मसीह की आज्ञा के अनुसार आध्यात्मिक रूप से समझा जाना, सिखाया जाना और प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके विज्ञान को उन लोगों को अवश्य समझना चाहिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और आध्यात्मिक रूप से सत्य को समझते हैं। ईश्वर सर्विच सेवा के लिए छाइन करता है जो इस तरह की फिटनेस में भरा हुआ है, क्योंकि ये मिशन की असंभवता के किसी भी दुरुपयोग को प्रतिपादन करता है। अखल बुद्धिमान अयुगे पर अपने उच्चतम विश्वासों को नहीं देता जब वो एक संदेश विहायक का कमीशन करता है, तो ये वो है जो आध्यात्मिक रूप से खुद आपके पास है। कोई भी व्यक्ति इस मानसिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है अगर इसे ईश्वर की शिक्षा दी जाए। जो कोई भी क्रिश्चियन साइंस में रास्ता खोलता है वो एक यात्री और अजनबी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाता है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करेगा, जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे, दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। संत योहन्ना के शब्दों में, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस सहायक को मैं क्रिश्चियन साइंस समझता हूँ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।